पृष्ठ संख्या 89 अध्याय 17 उपन्यास। उपन्यास की परिभाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की है, लेकिन यह कायदा है कि जो चीज जितनी ही सरल होती है उसकी परिभाषा उतनी ही मुश्किल होती है। कविता की परिभाषा आज तक न हो सकी, जितने विद्वान हैं उतनी ही परिभाषाएं हैं। किन्हीं दो विद्वानों की परिभाषाएं नहीं मिलती, उपन्यास के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिस पर सभी लोग सहमत हो। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। किन्हीं भी दो आदमियों की सूरतें नहीं मिलती, उसी भांति आदमियों के चरित्र भी नहीं मिलते। जैसे सब आदमियों के हाथ पांव आंखें कान नाक मुंह होते हैं, पर इतनी समानता पर भी उनमें विभिन्नता मौजूद रहती है, उसी भांति सब आदमियों के चरित्रों में बहुत कुछ समानता होते हुए भी कुछ विभिन्नताएं होती हैं। इसी चरित्र समानता और विभिन्नता, अभिन्नता और विभिन्नत्व और विभिन्नत्व में भी अभिन्नत्व दिखाना उपन्यास का मुख्य कर्तव्य है। संतान प्रेम मानव चरित्र का एक व्यापक गुण है। ऐसा कौन प्राणी होगा जिसे अपनी संतान प्यारी न हो। लेकिन इस संतान प्रेम की मात्राएं हैं, उसके भेद हैं। कोई तो संतान पर मर मिटता है, उनके लिए कुछ छोड़ जाने के लिए आप नाना प्रकार के कष्ट झेलते हैं, लेकिन धर्म भीरुता से अनुचित रूप से धन संग्रह नहीं करता। उसे शंका होती है कि कहीं इसका परिणाम हमारी संतान के लिए बुरा हो। कोई औचित्य का लेश मात्र भी विचार नहीं करता। जिस तरह भी हो कुछ धन संचय करना अपना ध्येय समझता है, चाहे इसके लिए उसे दूसरों का गला ही क्यों ना काटना पड़े। वह संतान प्रेम पर अपनी आत्मा को भी बलिदान कर देता है। एक तीसरा संतान प्रेम वह है जहाँ संतान की सच्चरित्रता प्रधान कारण होती है। जबकि पिता संतान का कुचरित्र देख कर उससे उदासीन हो जाता है, उसके लिए कुछ छोड़ जाना या कर जाना व्यर्थ समझता है। अगर आप विचार करेंगे तो इसी संतान प्रेम के अगणित भेद आपको मिलेंगे। इसी भांति अन्य मानवीय गुणों की भी मात्राएं और भेद हैं। हमारा चरित्राध्ययन जितना ही सूक्ष्म जितना ही विस्तृत होगा, उतनी ही सफलता से हम चरित्रों का चित्रण कर सकेंगे। संतान प्रेम की एक दशा यह भी है कि जब पुत्र को कुमार्ग पर चलते देखकर पिता उसका घातक शत्रु हो जाता है, वह भी संतान प्रेम ही है। जब पिता के लिए पुत्र घी का लड्डू होता है जिसका टेढ़ापन उसके स्वाद में बाधक नहीं होता, वह संतान प्रेम भी देखने में आता है। जहाँ शराबी जुआरी पिता पुत्र प्रेम के वशीभूत होकर यह सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि उपन्यासकार को इन चरित्रों का अध्ययन करके उनको पाठक के सामने रख देना चाहिए। पृष्ठ संख्या 90। उसमें अपनी तरफ से काट छाट कमी बेशी कुछ नहीं करनी चाहिए या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चरित्रों में कुछ परिवर्तन भी कर देना चाहिए। यहीं से उपन्यासकारों के दो गिरोह हो गए हैं, एक आइडियलिस्ट या आदर्शवादी, दूसरा रियलिस्ट या यथार्थवादी। रियलिस्ट चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। उसे इससे कुछ मतलब नहीं कि सच्चरित्रता का परिणाम बुरा होता है या कुचरित्रता का परिणाम अच्छा। उसके चरित्र अपनी कमजोरियां या खूबियां दिखाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं, और चूंकि संसार में सदैव नेकी का फल नेक बदी का फल बद नहीं होता बल्कि इसके विपरीत हुआ करता है। नेक आदमी धक्के खाते हैं, यातनाएं सहते हैं, मुसीबतें झेलते हैं, अपमानित होते हैं, उनकी नेकी का फल उल्टा है। बुरे आदमी चयन करते हैं, नामवर होते हैं, यशस्वी बनते हैं, उनकी बदी का फल उल्टा मिलता है। प्रकृति का नियम विचित्र है। रियलिस्ट अनुभव की बेड़ियों में जकड़ा होता है, और चूंकि संसार में बुरे चरित्रों की प्रधानता है, यहाँ तक कि उज्जवल से उज्जवल चरित्रों में भी कुछ न कुछ दाग धब्बे रहते हैं। इसीलिए रियलिज्म हमारी दुर्बलताओं, हमारी विषमताओं और हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्र होता है। वास्तव में रियलिज्म हमको पेसिमिस्ट बना देती है। मानव चरित्रों पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको हमको अपने चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसमें संदेह नहीं कि समाज की कुप्रथा की ओर ध्यान दिलाने के लिए रियलिज्म अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसके बिना बहुत संभव है कि हम उस बुराई को दिखाने में अतियुक्ति से काम लें और चित्र को उससे कहीं काला दिखाएं जितना वह वास्तव में है। लेकिन जब रियलिज्म दुर्बलताओं का चित्रण करने में शिष्टता की सीमाओं से आगे बढ़ जाता है तो वह आपत्तिजनक हो जाता है। फिर मानव स्वभाव की एक विशेषता यह भी है कि वह जिस छल और क्षुद्रता और कपट से घिरा हुआ है उसकी पुनरावृत्ति उसके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकती। वह थोड़ी देर के लिए ऐसे संसार में उड़कर पहुंच जाना चाहता है जहां उसके चित्त को ऐसे कुत्सित भाव से निजात मिले वह भूल जाए कि चिंताओं के बंधन में पड़ा हुआ है, जहां उसे सजीव सहृदय उदार प्राणियों के दर्शन हो, जहां छल और कपट विरोध और वैमनस्य का ऐसा प्राधान्य न हो। उसके दिल में ख्याल होता है कि जब हमें किस्से कहानियों में भी उन्हीं लोगों से साबका है जिनके साथ आठों पहर व्यवहार करना पड़ता है तो फिर ऐसी पुस्तकें पढ़े ही क्यों। अंधेरी कोठरी में काम करते करते जब हम थक जाते हैं तो इच्छा होती है कि किसी बाग में निकलकर निर्मल स्वच्छ वायु का आनंद उठाएं। इस कमी को आइडियलिस्ट पूरा करता है। आइडियलिज्म हमें ऐसे चरित्रों से परिचित कराता है जिनके हृदय पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ और वासना से रहित होते हैं, जो साधु प्रकृति के होते हैं। यद्यपि ऐसे चरित्र व्यवहार कुशल नहीं होते, उनकी सरलता उन्हें व्यवहारिक विषयों में धोखा देती है, लेकिन काइयेपन से उबे हुए प्राणियों को ऐसे सरल ऐसे व्यवहारिक ज्ञान विहीन चरित्रों के दर्शन से एक विशेष आनंद होता है। पृष्ठ संख्या 91। रियलिज्म यदि हमारी आंखें खोल देता है तो आइडियलिज्म हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान पर पहुंचा देता है। लेकिन जहां आइडियलिज्म में यह गुण है वहां इस बात की भी शंका है कि हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर बैठे जो सिद्धांतों की मूर्ति मात्र हो। किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं, लेकिन उस देवता में प्राण प्रतिष्ठा करना मुश्किल है। इसीलिए हम वही उपन्यास उच्च कोटि के समझते हैं जहां रियलिज्म और आइडियलिज्म का समन्वय हो गया है। उसे आप आइडियलिस्टिक रियलिज्म कह सकते हैं। आइडिया को सजीव बनाने के लिए रियलिज्म का उपयोग होना चाहिए और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। उपन्यासकार की सबसे बड़ी विभूति ऐसे चरित्रों की सृष्टि करना है जो अपने सदव्यवहार और सदविचार से पाठक को मोहित कर ले। जिस उपन्यास के चरित्रों में यह गुण नहीं है वह दो कौड़ी के हैं। चरित्रों को उत्कृष्ट और आदर्श बनाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह निर्दोष हो। महान से महान पुरुषों में भी कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। चरित्र को सजीव बनाने के लिए उसकी कमजोरियों का दिग्दर्शन कराने से कोई हानि नहीं होती। यही कमजोरियां उस चरित्र को मनुष्य बना देती है। निर्दोष चरित्र तो देवता हो जाएगा और हम उसे समझ ही न सकेंगे। ऐसे चरित्र का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। हम आइडियलिस्ट हैं। हमारे प्राचीन साहित्य पर आइडियलिज्म की छाप लगी हुई है। हमारा प्राचीन साहित्य केवल मनोरंजन के लिए न था, उसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ आत्म परिष्कार भी था। साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है, यह तो भाटों और मदारियों विदूषकों और मस्खरों का काम है। साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊंचा है। वह हमारा पथ प्रदर्शक होता है। वह हमारे लिए मनुष्यत्व को जगाता है, हम में सद्भाव का संचार करता है, हमारी दृष्टि को फैलाता है। कम से कम उसका यही उद्देश्य होना चाहिए। यह मनोरथ को सिद्ध करने के लिए जरूरत है कि उसके चरित्र पॉजिटिव हो, जो प्रलोभनों के आगे सिर न झुकाए बल्कि उनको परास्त करे, जो वासनाओं के पंजे में न फंसे बल्कि उनका दमन करे, जो किसी विजयी सेनापति की भांति शत्रुओं का संहार करके विजय नाद करते हुए निकले। ऐसे ही चरित्रों का हमारे ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। उपन्यास साहित्य पर थोड़ी सी विवेचना करने के बाद अब हम अपने हिंदी उपन्यासों पर दृष्टिपात करना चाहते हैं। पाठक गण तो यह जानते ही हैं कि उपन्यास एक पश्चिमी पौधा है जो भारतवर्ष में लगाया गया है। हमारे यहाँ उपन्यास काल से पहले ऐसे किस्से कहानियों का बहुत प्रचार था जिनमें प्रेम और विरह के वर्णन ही प्रधान होते थे। प्रेमी एक निगाहें माशुका का कुछ तय नाज हो जाता था। माशुका अपनी सहेलियों से अपनी विपत्ति कहानी सुनाती थी, आशिक साहब आहें भरते थे, सिर धुनते थे, घर पर खबर होती थी, यार समझाने के लिए जमा हो जाते थे, हकीम दवा करने जाते थे, पर इश्क के बीमार पर किसी दवा या समझाने बुझाने का असर न होता था। पृष्ठ संख्या 92। 2 महीनों बरसों जुदाई की तकलीफें झेलने के बाद किसी हिकमत से मिल जाते थे। अक्सर किस्सों में तिलिस्म और एयारी के विचित्र दृश्य होते थे जिससे कुतूहल बढ़ता था। उर्दू में तिलिस्म होश रूबा बड़े बड़े पृष्ठों के 27 जिल्दों में खत्म होता था और बोस्ताने ख्याल 7 जिल्दों में। उस वक्त तक हिंदी में उपन्यास का मैदान प्रायः खाली था। 2-1 अनुवाद अवश्य निकल गए थे पर कोई उपन्यास लेखक न पैदा हुआ था। उर्दू में तो उसके पहले फसाना आजाद के रचयिता पंडित रतननाथ दर, सर शार मौलवी अब्दुल हलीम शरर, मौलाना मोहम्मद अली आदि कई अच्छे उपन्यासकार हो गए थे। बंगला में भी बंकिम बाबू के उपन्यास निकल चुके थे लेकिन हिंदी में मैदान खाली था। उस समय स्वर्गीय बाबू देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति की रचना हुई और वह हिंदी में अनोखी एकदम नई चीज थी। हिंदी पाठक टूट पड़े और चंद्रकांता की खूब धूम हो गई। यद्यपि चंद्रकांता संतति तिलिस्म होश रूबा का अनुकरण मात्र है लेकिन हिंदी में आशिक माशूक की जो कथाएं छपती थी जिनमें न कोई भाव होता था न कोई प्रभाव, उन पाठकों के लिए चंद्रकांता ही गनीमत थी। समझ में नहीं आता कि जब अन्य भाषाओं में ऐसे ऐसे उपन्यासकार पैदा हुए जिनका जोड़ अब तक पैदा नहीं हुआ तो हिंदी में क्यों यह मैदान खाली रहा। चंद्रकांता के बाद देवकी नंदन ने कई सामाजिक उपन्यास लिखे जिनमें उपन्यास के अंकुर मौजूद थे। एआरी की ऐसी हवा बधी कि उनके बाद भी बहुत दिनों तक एआरी के किस्से निकलते रहे। उसके बाद जासूसी उपन्यास निकलने शुरू हुए जो अधिकांश यूरोपियन डिटेक्टिव स्टोरीज के अनुवाद होते थे। कुछ दिनों तक जासूसी उपन्यासों की खूब धूम रही और बहुत संभव था कि उसके बाद मौलिक उपन्यासों की बारी आती, लेकिन इसी बीच में बंगला उपन्यासों का रेला शुरू हुआ और वह अभी तक जारी है। बंगला में अच्छे बुरे जितने उपन्यास मिल सकते हैं उनका बिना कुछ सोचे समझे अनुवाद कर लिया जाता है। किसी अन्य भाषा के रत्नों से अपना भंडार भरना आपत्ति की बात नहीं, संपन्नतम भाषाओं में अन्य भाषाओं के अनुवाद होते रहते हैं, लेकिन वह भाषा ही क्या जहाँ सब कुछ अनुवाद ही हो और अपना कुछ न हो। इस पहलू से देखिए तो चंद्रकांता संतति का महत्व बहुत कुछ बढ़ जाता है। कम से कम अपनी वस्तु तो है। हमारा ध्येय है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए। क्या अनुवादों से राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त किया जा सकता है? एक मित्र से इस विषय पर वार्तालाप होने लगी तो उन्होंने कहा, हम यह मानते हैं कि अनुवाद से भाषा का महत्व नहीं बढ़ता, लेकिन जिन लोगों के लिए अनुवाद जीविका का प्रश्न है उन्हें आप क्या कह सकते हैं? इसका आशय यह हुआ कि जो लोग और किसी उपाय से जीविका का अर्जन नहीं कर सकते वे ही अनुवाद किया करते हैं। मगर इसी तरकीब से तो किसी त्याज्य विषय की रक्षा की जा सकती है। चोर के लिए चोरी भी तो जीविका का ही प्रश्न है, फिर चोर को सजा क्यों दी जाती है? फिर जब हम देखते हैं कि हिंदी जानने वाला आदमी 1 महीने में बंगला का इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि बंगला की साधारण पुस्तकें समझने लगे, तो बंगला से अनुवाद करने के लिए और भी कोई उज्र नहीं रह जाता। पृष्ठ संख्या 93। अगर अनुवाद ही करना है तो उन भाषाओं से किया जाए जो बंगला से कहीं संपन्न है। हमने अभी तक जिन गिने गिनाए फ्रेंच या रशियन पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है अंग्रेजी अनुवादों से किया है। हमारे युवकों को जिनका विचार साहित्य सेवा करने का हो उनको उचित है कि वे यूरोपियन भाषाएं सीखें और उनके रत्नों से हिंदी का भंडार भरे। वह हमें कोई ऐसी चीज दे सकेंगे जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ बहुत कम साधन है। साहित्य का सबसे ऊंचा आदर्श वह है जबकि उसकी रचना केवल कला की पूर्ति के लिए की जाए। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक के सिद्धांत पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वह साहित्य चिरायु हो सकता है जो मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलंबित हो। ईर्ष्या और प्रेम, क्रोध और लोभ, अनुराग और विराग, दुख और लज्जा, यह सभी हमारी मौलिक प्रवृत्तियां हैं। इन्हीं की छटा दिखाना साहित्य का परम उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के तो कोई रचना हो ही नहीं सकती। जबकि साहित्य की रचना किसी सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक मत के प्रचार के लिए की जाती है तो वह अपने ऊंचे पद से गिर जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आजकल परिस्थितियाँ इतनी तीव्र गति से बदल रही हैं, इतने नए नए विचार पैदा हो रहे हैं कि शायद अब कोई लेखक साहित्य के आदर्श को ध्यान में रख ही नहीं सकता। यह बहुत मुश्किल है कि ऑथर पर इन परिस्थितियों का असर न पड़े, वह उनसे आंदोलित न हो। यही कारण है कि आजकल भारत ही में नहीं यूरोप के बहुत बड़े विद्वान भी अपनी रचनाओं द्वारा किसी न किसी वाद का प्रचार कर रहे हैं। वे इसकी परवाह नहीं करते कि इससे हमारी रचना जीवित रहेगी या नहीं। अपने मत की पुष्टि करना ही उनका ध्येय है, इसके सिवाय उन्हें कोई इच्छा नहीं। मगर यह क्यों कर मान लिया जाए कि जो उपन्यास किसी विचार के प्रचार के लिए लिखा जाता है उनका इंटरेस्ट क्षणिक होता है। ह्योंगो का ला मिजरेबल, टॉल्स्टॉय के अनेक ग्रंथ, डिकेंस की कितनी ही रचनाएं विचार प्रधान होते हुए भी साहित्य की उच्च कोटि की है और अब तक उनका इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। आज भी शॉ, वेल्स आदि बड़े बड़े लेखकों के ग्रंथ प्रचार ही के उद्देश्य से लिखे जा रहे हैं। हमारा ख्याल है कि कुशल कलाकार कोई विचार प्रधान रचना भी इतनी सुंदरता से करता है कि उनसे मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निभता रहे। आर्ट फॉर आर्ट से का समय वह होता है जब देश संपन्न और सुखी हो। जब हम देखते हैं कि हम भांति भांति के राजनैतिक और सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए हैं, जिधर निगाह उठती है दुख और दरिद्रता के भीषण दृश्य दिखाई देते हैं, विपत्ति का करुण क्रंदन सुनाई देता है, तो कैसे संभव है कि किसी विचारशील प्राणी का दिल न दहल उठे। हाँ, उपन्यासकार को इसका प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि उसके विचार परोक्ष रूप से व्यक्त हो। उपन्यास की स्वाभाविकता में उस विचार के समावेश से कोई विघ्न न पड़ने पावे, वरना उपन्यास नीरस हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 94। अंत में हम अपने सहृदय नवीन लेखकों से अनुरोध करते हैं कि यदि आप उपन्यास लिखना चाहते हैं तो पहले तैयारी कीजिए। बिना मानव शास्त्र का उचित ज्ञान प्राप्त किए कभी न कलम उठाइए। यो तो जिन्हें रचना की ईश्वर दत्त शक्ति प्राप्त है वह आप ही लिख लेंगे, लेकिन मन में वीर भाव होने पर भी तो शास्त्र का कुछ ज्ञान होना परमा आवश्यक है। सबसे प्रधान मनोवृत्ति है, एक बार किसी प्रसिद्ध चित्रकार से एक शरीफ ने पूछा कि ऐसे सुंदर रंग आप कहाँ से लाते हैं। चित्रकार ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, जनाब अपने दिमाग से। समालोचक, जनवरी 1925।